ओम शांति। तो टॉपिक है ऊंची दुकान फीका पकवान पार्ट टू। इस मुहावरे का अर्थ है ऊपरी दिखावा करना। नाम बड़े दर्शन छोटे छोटे छोटे। तो नाम बड़ा काम छोटा। तो ऊपरी दिखावा करना वास्तव में ब्राह्मण जीवन में ऊपरी दिखावा लंबे समय तक नहीं चल सकता। और संसार में तो लोग जो हैं ऊपरी दिखावा के लिए बहुत सारा कुछ करते हैं। बाहर से तो अच्छे अच्छे काम करेंगे, दान पुण्य भी करेंगे, लेकिन आंतरिक मानसिकता कुछ और होती है। दूसरों का हित करने के पीछे अपना भी स्वार्थ समाया होता है। लेकिन ब्राह्मण जीवन में जो ऊपरी दिखावा है वो ऊपरी दिखावा लोक लाज के कारण करना पड़ता है। जब तक आत्मा में शक्ति नहीं होती है तो जो पुराने संस्कार हैं पिछले जन्म के, माने इस शूदर लाइफ के, जो पिछले शूदर लाइफ के, तो वो हमें ऊपरी दिखावा करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। क्योंकि ज्ञान को ठीक से अर्थात समझा नहीं है और वो फिर हमारे लिए घातक बन जाता है ऊपरी दिखावा। फिर हम जो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होनी चाहिए उससे वंचित रह जाते हैं। ऊपरी दिखावा बहुत सारी बातें हैं उसमें। माना हमने ड्रेस तो चेंज कर ली, ब्राह्मण तो बन गए, व्हाइट ड्रेस पहन ली, ऊपर का परिवर्तन हो गया, लेकिन आंतरिक जो परिवर्तन होना चाहिए उसकी महसूसता नहीं होती है। फिर लोक लाज के कारण हमारी निरंतरता तो बनी रहती है। माना सेंटर पर भी आएंगे, रोज मुरली भी सुनेंगे, अटेंडेंस भी लगेगी, सेवाओं में भी रहेंगे, लेकिन जो जीवन में परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं कोई धारणाओं में कमी रह जाती है। जैसे कल के मुरली में बाबा ने बताया कि मुरली सुनते समय भी बुद्धि दौड़ती रहती है, और अगर ये दो तीन बार सुनते सुनते आदत पड़ गई तो फिर बार बार वो मुरली में मन बुद्धि भटकता रहेगा। तो हम सोच रहे थे कि जो चार सब्जेक्ट हैं ज्ञान योग धारणा सेवा, सबसे पहला ज्ञान है, लेकिन इन सबसे जो बड़ा सब्जेक्ट है वो है धारणा का सब्जेक्ट। क्योंकि जब तक हमारी धारणाएं मजबूत नहीं है तब तक ज्ञान भी बुद्धि में ठहराएगा नहीं, उसका रस भी नहीं आएगा, योग में मन बुद्धि एकाग्र नहीं होगा, फिर सेवा में यथार्थ नहीं होगी। जैसे हम ब्राह्मण बने तो जरूर हम सब में कोई ना कोई पहले ऐसी धारणाएं थी जिन धारणाओं की बदौलत हम इस तरफ आकर्षित हो गए। ब्राह्मण बनने से पहले तो योग सीखा नहीं हमने, ये वाला ज्ञान सुना नहीं है, ऐसी सेवा नहीं की है, लेकिन उन धारणाओं ने हम सबको बाबा की तरफ आकर्षित कर दिया। कोई प्योरिटी की धारणा है थोड़ी बहुत, या सेवा करने की है, कोई ज्ञान सुनने की है, माना एक अंदर में उत्कंठा बनी हुई है, कोई ना कोई ऐसी धारणाएं हैं दूसरों को सुख देने की, जिन धारणाओं ने हम सबको बाबा के साथ जोड़ दिया। तो अगर धारणाएं हमारे मन में हमारे जीवन में अच्छी तरह से हैं तो हमारा निरंतर प्रगति होती रहेगी। नहीं तो होता क्या है, सेंटर में जाएंगे या मुरली सुनेंगे तो हम वहां अपना स्वार्थ ढूंढेंगे, वहां मुरली सुनने के बजाय अपने बिजनेस का सोचते रहते हैं। बाहर से तो हम आए हैं लेकिन अंदर से अपने बाबा के इतने धंधे दौरे की सोचते रहते हैं। भले मुरली सुन रहे हैं या योग में बैठे हैं लेकिन संकल्प कौन से चल रहे हैं। जैसे होता है ना आजकल का जो माहौल चल रहा है, तो अगर लंबे समय से हमने इस मार्ग से जुड़े तो हुए हैं लेकिन बाहर दूसरे धंधे से भी अगर जुड़े हुए हैं तो हमारे संकल्प युग में बैठे भी वही चलते रहेंगे कि अब ये 100 के नोट कैसे बदलेंगे, 500 के नोट कैसे बदलेंगे। तो वो धंधा दौरे की जो आदतें पड़ी हुई है वो पुरानी वाली हैं, पुराने संस्कार हैं जिनको हमने यहाँ भी आके छोड़ा नहीं है। माने इस ज्ञान को हमने रियलाइज नहीं किया है, इस ज्ञान को जीवन में धारण नहीं किया है। तो वो फिर ऊपरी दिखावा होने के कारण हम सभी इस लाइफ में चलते तो रहेंगे लेकिन बुद्धि हमारी बाहरी रहेगी। बुद्धि में वो जो शक्ति आनी चाहिए या एक जो फीलिंग आनी चाहिए, एक महसूसता शक्ति आनी चाहिए कि सचमुच मेरे में ये कमी है, वो नहीं होगी। तो यहाँ आने के बाद अगर इस अभी से मुक्ति पाएं कैसे, इसके लिए सच्चाई सफाई, जो बाबा के तेज सच्चे दिल पर साहबरा जी। कमी कमजोरियां तो हमारे पुरुषार्थ मार्ग में होती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन अगर सच्चे मन से हम बिना किसी हिचकिचाहट के बाबा को अगर हम अपनी कमी कमजोरियां बता देते हैं, उसको साफ मन से लिख के बता देते हैं और दिल से बता देते हैं, तो फिर हमें वो ताकत मिलती है, बाबा से वो शक्ति मिलती है। जैसे मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो अगर उसको ठीक होना तो बीमारी बतानी पड़ती है, बिना बताए डॉक्टर भी कैसे ठीक करेगा। उसी तरह जो भी हमारे में कमी कमजोरी है किसी प्रकार भी, चाहे थोड़े रूप में इम्प्योरिटी है या कोई ऐसी आदतें हैं, विकारों के वशीभूत सूक्ष्म विकार हैं जिनसे हम मुक्ति नहीं पा रहे हैं, तो सच्चे मन से अगर हम बाबा को बताते हैं और बताने के साथ साथ जो बाबा की श्रीमत है उस अनुकूल अगर हम चलते हैं, जो सामान्य श्रीमत भी है, जो एक अमृत वेले से लेकर रात्रि तक सामान्य श्रीमत, एक तो है एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करना, एक्स्ट्रा मेहनत करना, परिश्रम करना, लेकिन सामान्य श्रीमत में भी अगर हम एक्यूरेट चलते रहते हैं तो वास्तव में भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। दूसरी बात, हमने देखा इस ब्राह्मण जीवन में बहुत सारे, कई बार हम जिक्र करते हैं कि हम दूसरों के जीवन को देख के जल्दी परिवर्तन होते हैं। तो हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, कई लोग जो बाहर से तो दिखावा होता है कि हम बाहर से हम पहनावा हमारा अच्छा होगा, टिप टॉप होंगे, लेकिन आंतरिक संतुष्टता नहीं होती उनकी लाइफ से, तो उनके लाइफ से हम सीखने को भी वैसे हमारे संकल्प नहीं चलते हैं। लेकिन कोई कोई बाबा के बच्चे ऐसे भी हैं बड़े गुप्त हैं। हमने देखा कई अच्छे अच्छे हाई इस पर पोस्ट पोजीशन पर हैं, लेकिन उन्होंने अपने लाइफ की पूरी जो पूंजी थी वो बाबा के यज्ञ में समर्पित कर दी। इतने बड़े बड़े लेक्चरर प्रोफेसर, जितने भी उनको पगार मिलती थी, हमने देखा वहां रहते हुए जहां से हमारा ब्राह्मण जन्म हुआ अमृतसर से, तो वहां ऐसे भाई थे जो पूरी पूंजी सेवा में लगाते थे, आगे पीछे कोई नहीं, कुमार ने तो उनको अपने जीवन में भी तो सोचने के लिए विवश होना पड़ सकता था, लेकिन उन्होंने अपनी सारी जो पूंजी थी, संडे का दिन होता था या कहीं जब भी छुट्टी होती थी तो अपने पैसे से लिटरेचर खरीद कर अपना छोटा सा स्पीकर लेकर, कोई परवाह नहीं, अगर तबीयत भी खराब हो जाती थी तो भी हमने जाते देखा उनको। जैसे कल बाबा ने कहा, शरीर भले कैसा भी हो लेकिन सेवा को नहीं छोड़ेंगे वो। तो गांव-गांव में जाकर उन्होंने इतनी भागदौड़ की है, तो उनके जीवन को देखकर हमारे जीवन में जैसे एक उमंग सा आता है, प्रेरणा आती है, जिससे हमारा पुरुषार्थ भी सहज आ जाता है। माना उनको बाबा के ऊपर कितना भरोसा रहा है, कैसे उन्होंने अपने जीवन को वहां रहते हुए समर्पित कर दिया। ऐसे ऐसे भाई जिनके पास आने के लिए साधन नहीं होते थे और सवेरे क्लास में सबसे पहले पहुंचते थे, बुजुर्ग कोई साधन नहीं आने के लिए, 6-6 किलोमीटर से पैदल आकर, और जिनके पास साधन होते हुए भी लेट पहुंच रहे हैं, और वहां आकर भी थोड़ा मान शान की इच्छा जागृत होती है। अगर ऊपरी दिखावे का हमारा पुरुषार्थ है तो मान शान की इच्छा जागृत होती है, और जहां ऊपरी दिखावा है तो वहां भय की भी उत्पत्ति होती है, क्योंकि मान शान नहीं मिलेगा तो लोग क्या कहेंगे, इसका भय रहता है। फिर धीरे धीरे अनावश्यक कामनाएं बढ़ती जाती हैं, तो फिर मान शान नहीं मिला तो फिर सेवाओं से दूर होते जाते हैं, ब्राह्मण परिवार से धीरे धीरे दूर, जुड़े तो रहेंगे, आएंगे परिवार में, ब्राह्मण परिवार में अच्छा नाम रहेगा, वहां खाना पीना भी शुद्ध होगा, ठीक रहेगा, लेकिन जैसे हम बिजनेस में जाते हैं या कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तो वहां फिर खाना पीना भी अशुद्ध हो जाएगा, केवल दिखावे मात्र के हम ब्राह्मण बने हुए हैं, लेकिन बाहर जाकर फिर जैसे को तैसे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो हमारा जीवन में कहीं ऐसा ना हो जाए बगुला भगत की तरह, जो होता तो एक टांग पर खड़ा है लेकिन नजर उसकी कहाँ होती है, शिकार के ऊपर ही होती है। तो ऐसे ही हमारे भी ऐसा ना हो कि हम बाहर से तो दिख रहे बहुत अच्छे लेकिन अंदर में कुछ और ना चल रहा हो। जैसे उत्ती ने चर्चा की, यहाँ तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा सबसे अच्छा पुरुषार्थ होता है जब हम कमरे में जाते हैं, तो कमरे में, और कहीं पढ़ा था सबसे जो बढ़िया है साधना वो गोपनीय साधना, एक है दिखावे की साधना, लेकिन गोपनीय साधना में जो सुख मिलता है उसका कोई माप तोल नहीं है। तो जो हम बाहर हैं वो ही अंदर में एक समान हमारी स्थिति रहनी चाहिए, दिखावे का नहीं होना चाहिए, ताकि हम दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन सके। दूसरी बात, संसार में देखा कई सारे ऐसे साधु संत भी हुए हैं जी, बहुत सारी सुर्खियों में भी रहे हैं कि अंदर से बाहर से तो हम राम राम करते हैं, बहुत सारे लोगों को भजन कीर्तन भी सुनाया, लेकिन आज वो जेल के सलाखों में है। तो वो सारा उनका दिखावे का था, अंदर में तो सारा जैसे विकारों का तूफान चल रहा था, अंदर में जैसे दुर्भावनाएं का समुद्र मट रहा था। तो उस तरह का पुरुषार्थ नहीं हो, नहीं तो हमको उसके गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार होना पड़ता है, है ना। ऐसे ही यहाँ भी हम देखते हैं, जब बाबा से मिलने जाते हैं शांतिवन में, तो सीट तो सबकी अपनी अपनी होती है, कईयों की नाम की चिटकी लगी होती है, है ना, और कईयों को सीट नहीं मिलती तो क्या करते हैं, वो चिटकी उतार के बैठ जाएंगे और फिर बड़े योग से बैठ जाएंगे, ऐसे योग में बैठे हुए, लेकिन अपनी सीट वो भी दिखावे का होता है कि मैं बहुत बड़ा योगी हूँ, लेकिन सीट को हथियाने की बात होती है। तो हमारा भी वैसा ना हो कि हम बैठे तो योग में है, लेकिन कहीं मन हमारा कहीं और ही है। बहुत बड़ी बात है, माना इतनी मेहनत करके उस कुर्सी तक पहुंचना और वहां योग युक्त व्यवस्थाओं के बना के बैठना, ये भी कम बात नहीं होगा। लेकिन उसमें आंतरिक संतुष्टता नहीं होगी, दूसरे की सीट को देख ले, हम अपनी सीट उसको अपनी सीट समझ रहे हैं और दूसरे को अपसेट कर रहे हैं, तो जो उनके मन से निकलने वाली बद्दुआएं हैं वो कितना भारी नुकसान कर देंगे, तो वो वाली बात भी है। तो ऐसी हमारी इच्छाएं ना बढ़ती जाएं और संबंध हमारे, जो हमने संसार से संबंध, जो हमारे लौकिक है संबंध है, उनको हमने अलौकिकता में परिवर्तन कर दिया है। ऐसा ना हो कि यहाँ बैठ के भी हम लौकिक संबंधों को याद करते रहे और लौकिक के बारे में सोचते रहे, अर्थात उनको ही कुछ, जैसे कि एक तो बहन ने मुझे भेजा था बहुत सारा लिखकर, उन्होंने तो बहुत सारा भयंकर लिखा हुआ था कि हम ब्राह्मण लाइफ में आते हैं तो कैसे कैसे यहाँ आने के बाद या सेंटर में रहते हैं या गर्गस्थ में रहते हैं, फिर भी हमारा बुद्धि वो कैसे बाहर जुड़ा रहता है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई लौकिक आता है तो अलौकिक सेवा छोड़कर हम ज्यादा से ज्यादा टाइम लौकिक में देना शुरू कर देते हैं, है ना, फिर उनके लिए बहुत सारी चीजें संग्रह करते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा टोली देंगे, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बताएंगे, उनको घुमाएंगे फिराएंगे, उनका सफल कराने के बजाय हम उनको कुछ देने में लगे हुए हैं, तो ये कितना भारी नुकसान हो जाएगा। हाँ, आवश्यक रूप से उनकी सेवा करना ठीक है, यथार्थ सेवा करना, जितना सेवा हमें उनकी करनी चाहिए, यहाँ आए हैं वेलकम में, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा ना हो कि उनका पलड़ा भारी हो जाए, वो हमें यहाँ नुकसान पहुंचा के जाए, उनका हमें बाबा के यज्ञ में सफल कराना है, चाहे तन मन धन समय, अगर वो धन नहीं लगाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा उनका जो मन है इस ज्ञान के प्रति उनके मन में रुचि बिठाई जाए, उनका तन है जैसे घर में रहते तो सहयोग के लिए उनको प्रेरित किया जाए कि कैसे हम तन मन धन से उनको यहाँ सेवा में सहयोगी बना सकते हैं। तो ऊपरी दिखावे से हम सबको इन बातों का ध्यान रखना है। तो धंधे दोरी में भी अपने को उस तरह से मुक्त रखना है कि यहाँ आकर ऐसा ना हो कि हम उसी धंधे में लिप्त रहें, और बाबा के प्रति सच्चाई सफाई और ईमानदारी, क्योंकि जब तक हम अपने पुरुषार्थ के प्रति भी ईमानदार नहीं है तो भी हमें जो बाबा से सुख मिलना चाहिए उस सुख की अनुभूति नहीं होगी। तो अपने पुरुषार्थ के प्रति भी ईमानदारी, सच्चाई, सफाई, जो भी हमारे अंदर कमी कमजोरियां हैं उनके प्रति भी सच्चाई सफाई से हमको बाबा को बता देने का है, और जो भी हमको अगर सामने से कोई इशारा देता हूँ उसको हमको स्वीकार करना है। दिखावे का पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि दिखावे का पुरुषार्थ लंबे समय से तक नहीं चल पाएगा, वो उससे हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, फिर अंत में वही कहना पड़ेगा, आप पछताए क्या जब चिड़िया चुकी खेत। तो ऐसा ना हो कि इस ब्राह्मण जीवन का हम सुख लेने से वंचित रह जाएं। और समय का महत्व है, समय किस तरफ जा रहा है, देख रहे हम संसार की परिस्थितियां कितना बेकरार रूप से दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक सेकंड में जो योजना मनुष्य ने बनाई होती है सारी योजना पर पानी फिर जाता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। जैसे ऐसे ऐसे संसारिक नियम बनते हैं, ब्राह्मण भी उसमें बहुत सारे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अभी ऐसी पूंजी जमा है, वो पूंजी जमा करने के बाद उसको जमा भी नहीं कर सकते बैंक में, क्योंकि उसकी भी लिमिट है, अगर यहाँ इसके बाद जमा कराएंगे गवर्नमेंट आएगी पूछने, तो ना हो पूंजी होते हुए जैसे जलानी पड़ रही है, तो उस पूंजी का क्या फायदा है। ऐसी पूंजी एकत्रित करके जो हमारे जीवन को ही, हमारे जो आंतरिक सुख को ही ध्वस्त कर रही है, आंतरिक सुख से हमें वंचित कर रही है, तो ब्राह्मण जीवन में हमने सुख नहीं पाया, दुख पाया, तो फिर इसका क्या फायदा? फिर उनका और हमारा क्या फायदा रहा? क्या हमारे में दोनों में अंतर रहा? तो ऊंची दुकान फीका पकवान अर्थात दिखावे का पुरुषार्थ नहीं करना है। दिखावे की व्यवहारिकता ना हो, दिखावे का हमारा जो भी है ज्ञान योग धारणा सेवा, इसको हमको अभी भी थोड़ा जितना भी समय हमारे पास बचा है पुरुषार्थ के लिए, जी जान से जहाँ से भी हमको इशारा मिलता है आगे बढ़ने के टिप्स मिलते हैं, वो हमको कोई भी एक भी मौका छोड़ना नहीं है। ठीक है, ओम शांति।
इसके ऊपर एक संस्कृत,
हाँ जी, श्रीवत के लगाम तो ये बातें नहीं होती हैं। माना बाबा से प्यार अगर हमारे कमी है तो फिर हमारे में ये सारी बातें आती हैं। तो बाबा के प्यार को बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और प्यार भी हमारा देखो सामने वाला साधन भी तभी करता है अगर उसके साथ हम स्पष्ट रहेंगे, क्लियर रहेंगे। तो कमी कमजोरियां तो हम में कोई ना कोई है ही है, तो सच्चे मन से उसको बताना पड़ेगा ताकि वो निगरानी हमारे ऊपर रख सके, उनको कमी को निकालने में हमारी मदद कर सके, हमारे जो अंदर जो सूक्ष्म बीमारियां हैं उनसे मुक्त रख सके। हाँ आंसर मिल जाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं उनको बार बार बुद्धि में रिपीट करो ताकि बुद्धि में बैठ जाए। अगर वो मुरली में मिल तो जाते लेकिन अमल में नहीं आ रहे हैं, उसके लिए सच्चा ऐसा है, उसी कमी के लिए, उस कमी को पूरा करने के लिए पुरुषार्थ है। हाँ उस प्यार की बदौलत तो हम इधर बैठे हैं, अगर वो प्यार नहीं होता तो यहाँ होते हुए भी जैसे यहाँ नहीं है, जैसे बताया ना बाबा ने यहाँ होते बुद्धि बढ़ दौड़ रही है। हाँ
प्यार टिकना भी चाहिए ना,
प्यार टिकना भी चाहिए,
इसलिए छलांग मार के चले गए, फिर उसके साथ रहने लगे, फिर गुण दोष पता चला, फिर तलाक भी देते
हैं। हाँ तलाक भी दे देते हैं,
ये वो नहीं होना चाहिए। प्यार है तो प्यार टिकना भी चाहिए।
प्यार किया तो डरना क्या, माना मुसीबतें तो आएंगी आएंगी, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। तो ये प्यार बढ़ेगा नहीं, इस प्यार को बढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये दुनिया वाला प्यार नहीं, दैहिक प्यार नहीं है, ये बड़ा सूक्ष्म है। आत्मा के अंदर जन्म जन्म की बीमारियां लगी हुई हैं, जन्म जन्म की पुरानी आते हैं, जन्म जन्म से अनेक देहधारियों से प्यार है, इसलिए देह का प्यार आकर्षित करता है। अब ये सुप्रीम सत्ता से, सुप्रीम सोल से हमको कनेक्शन जोड़ना है, और जिससे हमको कनेक्शन जोड़ना है उसके जैसा हमको बनना पड़ेगा, तभी उसके प्यार की अनुभूति होगी। अगर उसकी हम बात को नहीं मान रहे हैं, उसकी बात को तरजीह नहीं दे रहे, तवज्जो नहीं दे रहे, तो फिर कैसे हमारा प्यार बढ़ेगा? तो प्यार तो अगर पूरा संपूर्ण प्यार होता है तो हम कब के एकदम बन जाते हो जल्दी जल्दी, हमारे प्यार में कमी है ये। हाँ बाकी तो अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार उसके प्यार का तो अनुभव करते करते हैं, लेकिन प्यार का अंतिम स्वरूप है कर्मातीत अवस्था, जो ब्रह्मा बाप समान हर कर्म करते हुए हमारा ध्यान उसके प्रति लगा रहे। और कोई किसी के विचार पूरा हो गया? तो दिखावे का पुरुषार्थ बंद। अब ये टॉपिक तीसरा नहीं होगा, दूसरे तक की हमको संतुष्ट रहना है। ओम शांति।
दो मिनट बाबा की याद रखना।